सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ता या साधन एजेंसीज और मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कुछ लेखकों ने अभिकर्ता यानी एजेंट एवं साधन यानी मीन्स के बीच अंतर स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जिससे काफी भ्रम उत्पन्न होता है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में अभिकर्ता और साधन में कोई फर्क नहीं है। पाश्चात्य देशों के जिन विद्वानों ने भी इस विषय पर लिखा है, सभी ने सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में अभिकर्ता एवं साधन के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया है, और वही सही भी है। इन दो शब्दों का अंग्रेजी के अलग अर्थ जरूर होते हैं, पर वर्तमान संदर्भ में फर्क बतलाना मात्र संशय बढ़ाने का प्रयास करना ही होगा। जिन चीजों से व्यक्तियों का व्यवहार समाज में नियंत्रित होता है, वे सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। कुछ साधन प्रत्यक्ष हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक, कुछ सामूहिक हैं तो कुछ संस्थागत, और कुछ औपचारिक हैं तो कुछ अनौपचारिक। सामाजिक नियंत्रण के अनगिनत साधन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमुख साधनों की चर्चा करेंगे। पहला, परिवार यानी फैमिली। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहां समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यही होती है। माता पिता अपने बच्चे को यही सिखलाते हैं कि कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा अनुचित है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों की जानकारी सर्वप्रथम परिवार में ही होती है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता है। परिवार अपने सदस्यों को स्नेह, भावनात्मक समर्थन, डांट फटकार के माध्यम से समाज के नियमों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करता है। चूंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का ही सदस्य बना रहता है, इसीलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में आजीवन कार्य करता है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर खान पान के नियमों, व्यवसाय संबंधी नियमों, विवाह संबंधी नियमों, समाज के अन्य समूहों के संबंध के नियमों, पारिवारिक दायित्वों के नियमों एवं धार्मिक नियमों के संबंध में विशेष रूप से नजर रखता है। परिवार अपने सदस्यों के सभी प्रकार के व्यवहारों को नियंत्रित करता है एवं विसामान्य व्यवहारों को रोकने की कोशिश करता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण के लिए औपचारिक और दमनकारी उपाय नहीं करता, बल्कि अनौपचारिक साधनों जैसे निंदा, आलोचना, असहमति, असम्मानजनक व्यवहार, हास्य, व्यंग इत्यादि की मदद से अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम एवं सहानुभूति की भावना भी व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करने में कोई कम प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है। दूसरा, प्राथमिक समूह। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूह की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण में प्राथमिक समूहों का योगदान बचपन से ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार, मित्र मंडली, क्रीड़ा साथी, पड़ोसी इत्यादि आते हैं। सामाजिक नियंत्रण के रूप में परिवार की भूमिका पर विस्तृत चर्चा इससे पहले ही की जा चुकी है, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ परिवार के अलावा अन्य प्राथमिक समूहों जैसे पड़ोस एवं मित्र मंडली की चर्चा की जा रही है। व्यक्ति बचपन में घर के बाहर अपने पड़ोसियों से मिलता जुलता है एवं अपने क्रीड़ा साथियों के साथ खेलता है और परस्पर अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार के समूह में बच्चा जीवन की बुनियादी बातों के बारे में तथा यौन भेद के बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। बच्चे जब अपने समूह के साथियों के साथ खेलते हैं, तब इस क्रम में भी अनौपचारिक नियमों का समावेश होता है। इन नियमों का पालन उनके लिए आवश्यक हो जाता है। यदि समूह का कोई बच्चा इन नियमों का उल्लंघन करता है, तब उसे समूह से फटकार एवं व्यंग सुनना पड़ता है, या कभी कभी उसे समूह से निष्कासित भी किया जाता है, जिनके सहारे बच्चों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। परिवार में इन बच्चों के अनेक अनपेक्षित व्यवहारों को सहन भी कर लिया जाता है, परंतु पड़ोसी समूह, मित्रों या क्रीड़ा समूह इत्यादि प्राथमिक समूहों द्वारा इन सभी व्यवहारों को सहन नहीं किया जाता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाल्यकाल में सामाजिक नियंत्रण में प्राथमिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका प्रभाव उसके पूरे जीवन काल में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि गलत संगति से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। व्यक्ति के जीवन का यह गठन काल यानी फॉर्मेटिव पीरियड है, इसलिए व्यक्ति के आचरण पर बाल्यकालीन प्राथमिक समूहों के अंतःक्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से काफी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। तीसरा, लोक रीतियां एवं लोकाचार, फॉक पेस एवं मोर्स। विलियम ग्राम समनर ने समाज के विभिन्न प्रकार के नियमों, कानूनों, मान्यताओं, आदर्शों एवं व्यवहारों को लोक रीति एवं लोकाचार के श्रेणी में रखा, और उन्होंने बताया है कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, समाज के सदस्यों एवं व्यक्तियों का नियंत्रण एवं संचालन भी लोक रीति एवं लोकाचार से होता है। लोक रीति का तो लोग कभी कभी पालन नहीं भी करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कठोर दंड नहीं होता है, पर लोकाचार का तो जबरन प्रयोग करते ही हैं। आधुनिक समाज की तुलना में आदिम जातियों एवं परंपरागत समाज में लोकाचार की महत्ता सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में बहुत ही ज्यादा है। वे सामाजिक नियम कानून आधुनिक राज्य के नियम कानूनों से काफी किसी न किसी रूप में कम कारगर नहीं है। फर्क इतना ही है कि लोग इसका पालन स्वाभाविक ढंग से बिना किसी बाह्य दबाव के करते हैं। चूंकि लोक रीतियां और लोकाचार जीवन का एक स्वाभाविक अंग हुआ करता है, लोकाचार के अनुरूप लोग इसलिए भी व्यवहार करते हैं क्योंकि इसमें समूह कल्याण की भावना भी छिपी होती है। इसका पालन करना नैतिक दृष्टि से भी उचित माना जाता है। लोक रीतियां एवं लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अनौपचारिक साधन है। चौथा, धर्म या मजहब यानी रिलीजन। धर्म हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारी मान्यताओं, विश्वासों, परंपराएं, पर्व त्यौहार आदि न किसी न किसी तरह से धर्म से संबंध होते हैं। ऐसी स्थिति में मजहब की भूमिका सामाजिक नियंत्रण में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सभ्यता के प्रारंभ से ही व्यक्ति ऐसी घटनाओं का अनुभव करता रहा है जिन पर मनुष्यों का नियंत्रण नहीं रहा है, जैसे जन्म, मृत्यु, स्वप्न देखने की घटना, बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, उल्कापात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर मनुष्यों का नियंत्रण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य लाचार होकर अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने लगता है। इन शक्तियों में विश्वास के साथ साथ व्यक्ति में एक प्रकार का भय भी उत्पन्न होता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति में भक्ति, आदर या भय पैदा होता है। मजहब के द्वारा हम समाज विरोधी व्यवहारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी या बेईमानी करना पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए, निर्धनों की सहायता करनी चाहिए इत्यादि कुछ ऐसी सुक्तियां हैं जो हमें ऐसे व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे एक स्वस्थ सामाजिक जीवन का विकास होता है। गरीबी के कारण कभी कभी हमारी इच्छा दूसरों के लूट का धन इकट्ठा करने की हो जाती है, पर धर्म के प्रभाव से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जब हम काफी दुखों में घिर जाते हैं तब हमें आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वैसी स्थिति में धर्म ही हमें आत्मसंतोष देता है और अच्छा कर्म करने के लिए फिर से प्रोत्साहित करता है। धर्म लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन इसलिए है कि विभिन्न धर्मों में ईश्वर को सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान माना गया है। लोगों की यह भी मान्यता है कि ईश्वर हमारे सारे कार्यकलापों को देखता रहता है। इस जीवन में या मरने के बाद हमारे कर्मों के अनुसार वह हमारे भाग्य का फैसला करेगा। हर किसी के ईश्वरीय दंड का बहुत डर होता है। ऐसी मान्यता है कि गलत काम करने पर लोगों को मरणोपरांत नरक जाना पड़ता है। नरक के नाम से लोगों के दिलों में इतनी घबराहट होती है कि बहुत लोग गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। स्वर्ग का विवरण सुनने में इतना अच्छा लगता है कि हर एक भौतिकवादी व्यक्ति मरने के बाद हमेशा स्वर्ग जाने की ही कल्पना करता है। नरक के डर से एवं स्वर्ग की लालसा से हम समाज में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। परंपरागत समाज में धर्म की विशेष महत्ता होती है, क्योंकि लोग वहां अंधविश्वासी होते हैं। लेकिन आधुनिक समाज के अंतर्गत तर्क एवं विज्ञान की इतनी प्रधानता हो गई है कि धर्म का सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में महत्व काफी घट गया है। पांचवा, नैतिकता, मोरेलिटी। धर्म की तरह नैतिकता भी एक ऐसा सांस्कृतिक तत्व है जो व्यक्ति एवं समूह के आचरण को नियंत्रित करता है। यह सही है कि नैतिकता का धर्म से बहुत गहरा संबंध है, पर नैतिकता धर्म नहीं है। धर्म का आधार व्यक्तियों का विश्वास है, पर नैतिकता का संबंध व्यक्तियों का विवेक है। नैतिकता हमें यह पाठ पढ़ाता है कि कौन सा कार्य उचित है या अनुचित है, या फिर कौन सा कार्य अच्छा या बुरा है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अंधविश्वासों के आधार पर धर्म में विश्वास करता है, पर नैतिकता तो अंतरात्मा की आवाज होती है। इन कारणों से नैतिकता धर्म से ज्यादा प्रभावशाली होती है। धर्म में तो कुछ लोगों को अविश्वास भी हो सकता है, पर नैतिकता के साथ ऐसी बातें नहीं होती हैं। व्यक्तियों का व्यवहार जितना बाहरी परिस्थितियों के दबाव में नियंत्रित होता है, उससे कहीं ज्यादा आंतरिक चेतना से होता है, और आंतरिक चेतना का निर्माण नैतिकता के प्रतिमानों से होता है। नैतिकता का संबंध ईलोक से होता है। ईलोक की परिस्थितियां हमारे व्यवहार को तत्काल प्रभावित करती हैं। चूंकि धर्म का संबंध ज्यादा परलोक से होता है, इसलिए हम कभी कभी उसकी उपेक्षा करके भी अपने स्वार्थों की पूर्ति गलत काम करके बैठते हैं। नैतिक मूल्यों का प्रभाव कुछ वैसा होता है कि उसे हम स्वेच्छा से पालन करते हैं, इसलिए नैतिक काम करने वालों को अक्सर अपने आप पर गर्व भी होता है। नैतिक कार्य जितना अपने लिए लाभकारी होता है, उससे कहीं ज्यादा समाज के लिए लाभकारी होता है। नैतिकता में जन कल्याण की भावना होती है। कुछ नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं जो समान रूप से विभिन्न समुदायों एवं धर्मों में पाए जाते हैं। छठा, प्रथा यानी कस्टम। जब किसी व्यवहार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ऐसे व्यवहार बहुत दिनों से प्रयोग में रहने के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदायों या आदिवासी समाजों में प्रथाओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और लोगों के बीच सामाजिक नियंत्रण का यह एक अत्यंत प्रबल साधन है। एम्ब्रू एस बोगार्डस ने प्रथा को विश्लेषित करते हुए लिखा है कि प्रथाएं समाज द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे विधियां हैं जो व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें सत्य मान लिया जाता है और जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। प्रथाओं के अंतर्गत आने वाले मान्यताओं या व्यवहारों के प्रति अवहेलनात्मक प्रवृत्ति को हम आश्रय नहीं देते हैं। इसका एक कारण यह है कि प्रवृत्ति सामाजिक जीवन में इस प्रकार घुल मिल जाती है कि यह स्वतः व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। दूसरा यह कि प्रथाओं की अवहेलना किए जाने के परिणाम की कल्पना करके लोग घबराते हैं। सातवां, नेतृत्व, लीडरशिप। आधुनिक समाज में व्यक्तियों के आचरण के निर्धारण में नेताओं की अहम भूमिका होती है। यहाँ नेताओं से तात्पर्य मात्र राजनीतिक नेताओं से नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेता पाए जाते हैं उससे है। मनुष्य को जीवन में बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत किस्म के सामाजिक समूहों एवं समितियों से जुड़ा होता है। धार्मिक अनुष्ठानों में हम पुरोहितों, धर्मगुरुओं, मुल्लाओं एवं अन्य किस्म के धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों से आचरण का निर्देश मिलता है। जहाँ कहीं भी हम नौकरी करते हैं, वहाँ भी हम अपने यूनियन के नेताओं के मुताबिक आचरण करने को बाध्य होते हैं। नेताओं का व्यक्तित्व जितना आदर्शमय एवं ऊंचा होता है, उसका प्रभाव भी सामान्य लोगों पर उतना ही गहरा और दीर्घकालीन होता है। आठवां, कानून यानी लॉ। मानव शास्त्रियों द्वारा दिए गए आदिम समाज के अध्ययनों से पता चलता है कि आदिम काल से ही सामाजिक नियंत्रण में कानून की प्रमुख भूमिका रही है। कानून के द्वारा सामाजिक नियंत्रण दो तरीके से होता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीका। यदि लोग समाज में कानूनों को ध्यान में रखकर अपना आचरण करते हैं, तो समाज पद या पदक देकर वैसे लोगों को पुरस्कृत करता है। ठीक इसके विपरीत, यदि लोग बार बार कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका जैसे संस्थानों के माध्यम से अपराधियों को दंडित किया जाता है। आदिम समाज एवं आधुनिक समाज के कानूनों के बीच एक बुनियादी फर्क यह है कि आदिम समाज का कानून अलिखित होता था, जिसका आधार परंपरा से चली आ रही सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक विश्वास था, लेकिन आधुनिक समाज का कानून प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसका विकास तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किया गया है और यह लिखित संहिता के रूप में पाया जाता है। आधुनिक समाज के नियंत्रण एवं संचालन में कानून की सबसे अहम भूमिका होती है। आधुनिक समाज इतना जटिल है कि यहाँ विभिन्न किस्म की समस्याएं रोज उठती रहती हैं। लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमेशा विचलनकारी व्यवहार करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे व्यक्ति के जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आधुनिक समाज को बने रहने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। 9. राज्य। आधुनिक युग में जहाँ राज्य की अत्याचारी भूमिका में कमी आई है, वहीं इसकी अन्य गतिविधियों में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। साम्यवादी राज्यों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। वे राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ अपने नागरिकों पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। वे नागरिकों के विघटनकारी कार्यों को रोकते हैं। इस प्रयास में राज्य ने वैश्यावृत्ति, जुआ, लूटपाट, राहजनी इत्यादि अनेक बुराइयों पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। आदिम समाज या प्राचीन काल में जो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका समस्त समुदाय की थी, वही भूमिका आधुनिक समाज में राज्यों की हो गई है। 10. जनसंचार का माध्यम। परंपरागत समाजों में संचार का एकमात्र साधन आमने सामने का संपर्क होता है, पर आधुनिक प्रौद्योगिक समाजों में अखबार, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि जनसंपर्क के साधन केवल संवाद के ही नहीं बल्कि सामाजिक नियंत्रण के भी साधन हो गए हैं। 11. शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में से है। शिक्षा मनुष्य को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने बारे में तथा समस्त समाज के बारे में ज्ञान हासिल करता है। यहाँ शिक्षा से हमारा तात्पर्य मात्र स्कूली शिक्षा से नहीं है। शिक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वह है जो हमें शिक्षा संस्थानों से या पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो अलिखित है। इसे यह शिक्षा मित्र मंडली, पड़ोसी, समाज के बुजुर्गों इत्यादि से प्राप्त होती है। आधुनिक समाज में औपचारिक शिक्षा की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन आदिम समाज या निरक्षर समाज में शिक्षा का मुख्य स्रोत अनौपचारिक साधन था। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामाजिक नियंत्रण में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाश्चात्य देशों में कानून एवं राज्य की अहम भूमिका होती है, तो भारत जैसे परंपरागत देशों में परिवार, लोकाचार, धार्मिक विश्वास एवं नैतिकता जैसी सामाजिक अभिकरणों की कुछ विशेष महत्ता है। अपने देश के अंदर ही सामाजिक नियंत्रण के वे सभी अभिकरण शहरों की तुलना में गांवों में कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली हैं। समय के साथ एक ही समाज में इन अभिकरणों के प्रभाव में उतार चढ़ाव भी होता रहता है, पर वे विश्वव्यापी स्तर पर सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं। कुछ विद्वानों ने उन सभी अभिकरणों को छोटे उपखंडों में विभक्त कर कुछ अन्य प्रकार के अभिकरणों की चर्चा की है। चूंकि इस संबंध में यहाँ सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का निचोड़ रखने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के अभिकरणों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा नहीं की जा रही है।